जी, तो इन दो उमूर के लिहाज से लोगों की चार किस्में हैं। अंबियाए कराम इनमें से आला तरीन और अशरफ किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो बिल्कुल इन लोगों के बरअक्स और इनकी ज़िद हैं। ना इन्हें दीन की बसीरत हासिल होती है, ना तनफीज से हक़ की कुव्वत। और दुनिया में ज़्यादातर मखलूक इसी किस्म की है। ऐसे लोगों को देखने से आंखों में चुभन होती है, रूह को बुखार और कल्ब को बीमारी लाहक होती है। ऐसे लोग बस्तियों को तंग कर देते हैं, बाजारों में महंगाई बढ़ा देते हैं। इनकी सोहबत से जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। नंबर तीन, तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो रुश्त व हदायत की बसीरत व मार्फत तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमज़ोर वाक़े होते हैं कि तनफीस से हक़ और दावत इलल हक़ की कुव्वत नहीं रखते। ऐसे लोग ज़ईफ़ किस्म के मोमिन होते हैं, और कवी मोमिन अल्लाह के नज़दीक ज़ईफ़ से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा महबूब है। चौथी किस्म के वो लोग हैं जो कवी, साहिब कुव्वत, साहिब अजीमत और हिम्मत तो हैं, लेकिन दीनी बसीरत में कमज़ोर हैं। इनमें इसकी तमीज़ ही नहीं होती कि वो पहचान सकें कि अउलिया रहमान कौन हैं और अउलिया उस शैतान कौन हैं। बल्कि हर काली चीज़ उनके नज़दीक खजूर होती है, हर सफ़ेद चीज़ चर्बी। ये लोग सोजन को चर्बी का इजाफा और अगर कोई नफ़ा बख्श दवा पेश की जाए तो उसे जहर समझते हैं। ऐसे लोगों में इमामत फी दीन की सलाहियत कतअन नहीं होती। और वाकया ये है कि सिवाय पहली किस्म के लोगों के किसी में भी इमामत फी दीन की सलाहियत नहीं होती। चुनाचे सूरह अलिफ लाम मीम सजदा में अल्लाह ताला का क्या इरशाद है, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ। और जब इन लोगों ने यानी बनी इसराइल ने सब्र किया तो हमने उनमें से ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत करते थे और वो हमारी आयात पर यकीन रखते थे। अब यहाँ पर देखें, एक लीडर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सब्र, सबसे पहली चीज़ क्या है? सब्र। तो दीन को सिखाने वाले वही होते हैं जो अज़ियतों पर सब्र करें। तरह तरह की अज़ियतें मिलती हैं। सबसे पहले तो नफ्स की तरफ से अज़ियतों का सामना करना पड़ता है। नफ्स चाहता है ये करो ये करो, नफ्स के ख़िलाफ़ जाना पड़ता है। फिर इसी तरह जो आपसे मोहब्बत करने वाले होते हैं वो भी आजमाइश बन जाते हैं, और नफ़रत करने वाले भी आजमाइश बन जाते हैं। तो हर आजमाइश पर पहला काम करने का क्या है? सब्र करना है। फिर दूसरी चीज़ क्या है? जो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत करते हैं, यानी सब्र, अमर बिल मारूफ, और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते हैं। यानी अमर बिल मारूफ वो बंदा कभी नहीं कर सकता जो अल्लाह ताला की आयत पर यकीन न रखे। हर आयत पर उसे यकीन हो, हर बशारत पर यकीन, हर हुक्म की फौरन से वो तामील करने वाला हो। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या हमें ख़बर देते हैं कि इन हजरात ने सब्र और यकीन के ज़रिए अमामत फी दीन का दर्जा हासिल किया है। तो किस तरह हमने अमामत फी दीन करनी है? सब्र के साथ और यकीन के साथ। क्योंकि जब तक सब्र नहीं होगा हम दावा का काम कर ही नहीं सकते, और जब तक यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि सब्र भी तभी आता है जब हमें यकीन होता है। मिसाल के तौर पे कोई आपको अज़ियत दिए जा रहा है और आपको अल्लाह की आयात पर यकीन है, वबशरिस साबिरीन, तो जब आपको यकीन होगा तो आप अच्छा सब्र कर सकेंगे। ठीक है, और इसी तरह जब तक सब्र ना हो तो यकीन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यकीन किस पर? अल्लाह की जन्नत पर, जन्नत में मिलने वाली नेमतों पर। तो उसके लिए भी तो अभी सब्र दरकार है ना, कि आज के लिए नहीं है, जन्नत तो बाद में मिलेगी। तो सब्र और यकीन दोनों लाजिम व मलजूम हैं। अच्छा, और खासिरीन की जमात से सिर्फ इन्हीं हसरात को अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना फरमा दिया है। अल्लाह ताला पहले उस ज़माने की कसम खाता है जिसमें खासिरीन अपने खुसरान और घाटे की कोशिशें करते हैं, और नफ़ा उठाने वाले अपने रिब्ह और मुनाफे की तहसील की कोशिशें करते हैं। अल्लाह ताला सूरह असर में फरमाते हैं, वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی ہدایت کرتے رہے، البتہ وہ نقصان میں نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ صرف ایمان اور معرفت اور صبر علی الحق پر اکتفا نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت اور تلقین کریں، یعنی ایک دوسرے کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہیں اور ان کو حق اور صبر پر آمادہ کریں. تو دیکھیں، اپنی ذات سے ہم نے اوپر اٹھنا ہے اور لوگوں سے اوپر اٹھ کر انشاءاللہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے لوگوں کے سوا تمام خسران اور نقصان میں ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ معاصی اور گناہ بصیرت قلب کو ضائع کر دیتے ہیں، جیسا چاہیے گناہ کرنے والے ادراک کے حق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے والوں کی تمام قوتیں عزیمتیں پست اور کمزور ہو جاتی ہیں، اور اس لیے وہ حق کے لیے صبر و ثبات کی طاقت ہی اپنے اندر نہیں رکھتے، بلکہ معاصی کا حملہ اور وار قلوب پر ہر وقت جاری رہتا ہے، تاکہ اس کی قوت مدرکہ بالکل دوسری راہ اختیار کر لیتی ہے، اور جس طرح اس کے اعمال و افعال کی راہ دوسری سمت جاتی ہے، اس کی راہ بھی غلط اور کج ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ باطل کو حق سمجھتا ہے اور حق کو باطل، معروف کو منکر سمجھنے لگتا ہے اور منکر کو معروف. اور جب وہ غلط راہ پر بلا کسی رکاوٹ کے چل کھڑا ہو، تو اب وہ سفر الی اللہ، سفر الی دار الآخرت سے بالکل بھٹک جاتا ہے، اور صرف باطل پرست، ردی الاخلاق اور ردی الاعمال لوگوں کے مستقر کی طرف سرپٹ دھوڑا چلا جاتا ہے، جو صرف دنیا کی زندگی پر قناعت کیے ہوئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات سے بالکل غافل، بے خبر اور لقاء الہی سے بالکل محروم ہو چکے ہیں. اگر معاصی اور گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ہو اور صرف اتنی ہو تو کافی وافی ہے. اتنی ہی عقوبت کا تصور دعوت دیتا ہے کہ انسان معاصی اور گناہوں سے پوری طرح اجتناب کرے اور اللہ کی نافرمانی قطعا ترک کر دے. واللہ المستعان. پھر اسی طرح قلبی نور اور شیطان، یعنی جو دل سے اٹھا ہوا نور ہوتا ہے نا، وہ وسوسوں کو جلا ڈالتا ہے. یاد رکھیے گا، طاعت و عبادت قلب کو روشن کر دیتی ہے، قلب کو جلا دیتی ہے، اور غبار قلب ثقیل کر کے، یعنی پالش کر کے، منور و چمکدار، قوی اور مضبوط کرتی ہے. جب طاعت و عبادت کی کثرت سے قلب صاف و شفاف، نورانی و چمکدار اور آئینے کی طرح عکس ریز ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات عجیب و غریب ظاہر ہوا کرتے ہیں. اس قسم کے قلب والے آدمی کے پاس اگر کبھی شیطان پہنچ جاتا ہے، تو اس کا نور اور اس کے قلب کی روشنی کا پرتو، یعنی عکس، شیاطین پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح آسمان کے فرشتوں کی باتیں چھرانے والے شیاطین پر شہاب ثاقب ٹوٹنے سے ہوتا ہے. بسا اوقات روشن قلب انسان شیاطین کو بچھاڑ دیتا ہے. دوسرے شیاطین ہمدردی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور اس سے وجہ دریافت کرنے لگ جاتے ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ کسی انسان نے اسے بچھاڑ دیا ہے، اسے کسی انسان کی نظر لگ گئی ہے. اللہ اکبر. تو دیکھیں، اس کے اپوزٹ دیکھیں، ایک طرف تو اللہ کی اطاعت سے ہمارا قلب روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو جب کبھی شیطان آنے لگتا ہے تو شیطان کو کرنٹ لگتا ہے، وہ واپس جاتا ہے. پھر دوسرے شیاطین ہمدردی سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تو شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس بندے کی نظر لگ گئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن جس دل میں اطاعت ہی نہ ہو، جس دل میں اللہ کا نور ہی نہ ہو، جو دل دنیا کی محبت سے کھچا کھچ بھرا ہو، جس دل میں نفرتیں ہوں، عداوتیں ہوں، تعصب ہو، تکبر ہو، قسوت القلوب ہو، اس دل پر شیاطین کے کتنے لشکر پراؤ ڈالتے ہوں گے. واللہ المستعان. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. تو اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے کہ میرا دل کیسا ہے. میرے دل پر جب شیاطین القا ہوتے ہیں تو ہاؤ دے فیل؟ کیا وہ ریلیکس ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑی زبردست پلیس ہے، یا ان کو دھچکا لگتا ہے، کرنٹ لگتا ہے، کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے اور واپس چلے جاتے ہیں، ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، आइए अपने दिलों का जायज़ा लेते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दिल की सख्ती से बचाएं, अल्लाह ताला हमारे दिल को तकब्बुर से बचाएं, हमारे दिल को नफ़रतों से पाक कर लें। तो जिस दिल में नफ़रतें ज़्यादा होंगी, शैतान सबसे ज़्यादा उस दिल में वसवसे डालता है। तो अपने दिलों में ये जो नफ़रतें ना, उनको बाहर निकाल फेंकें। हमने कितना रहना है, ये जिससे हम नफ़रत करते हैं उसने कितना रहना है इस दुनिया में, वो भी आरसी मेहमान, मैं भी आरसी मेहमान, वो भी नूर यानी खाकी मखलूक है, मैं भी एक खाकी मखलूक हूँ, ना मेरा ये जहाँ ना उसका ये जहाँ। तो फिर कैसी अदावतें, कैसी नफ़रतें। तो लोगों को गले से लगाइए, नफ़रतों को गले से नहीं लगाना। हम लोग बात पकड़ कर इंसान छोड़ देते हैं, हालांकि क्या करना होता है, इंसानों को पकड़ें, बातों को जाने दीजिए। फिर इसी तरह हम देखते हैं शैतानी तसल्लुत। क्या ये रोशन नूरानी कल्ब और वो तारीख़ उस्या कल्ब बराबर हो सकते हैं कि जिसकी उम्मीदें तारीख, जिसकी ख्वाहिशात खबीसा और बेशुमार, जिसको शैतान अपना ठिकाना और घर बना चुका है और हर सुबह को उठते ही उसे ये मुबारकबाद पेश करता है कि ए खाना ख़राब, जिसकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब गई, मेरी जान तुझ पर फिदा। अल्लाहु अकबर। शैतान क्या कहता है कि मैं दुनिया और उसके बाद हशर में भी तेरा साथी हूँ और तू हर जगह मेरा साथी है। अगर तू शकावत और बदबख्ती के घर में जाए तो मैं और तू दोनों शकावत और रसवाई के शरीक हाल हैं, यानी आज भी मेरे तेरे साथ शरीक हूँ, कल हम जहन्नुम में भी शरीक होंगे। चिनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स रहमान की याद से गाफिल होकर ज़िंदगी बसर करता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसके साथ रहता है। और बावजूद ये कि शयातीन गुनाहगारों को राह से भटका देते हैं, ताहम गुनाहगार अपने तय ख्याल करते हैं कि वो राह गुनाहगारों को पर नहीं, यानी वो राह रास्त पर हैं। यहाँ तक कि जब गुनाहगार हमारे हुजूर में हाजिर होगा तो शैतान को देखकर कहेगा, ए काश, या लैत बैनी व बैनका बुअद अल मशरिकैन फबिस अल करीन, मुझ में और तुझ में मशरिक व मगरिब का फासला होता, तू बुरा ही साथी है। वलन यनफअकुम अल यौम इज़ ज़लमतुम अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरिकून, चूँकि तुमने साथ ही नाफरमानी की है इसलिए अज़ाब में भी तुम दोनों एक दूसरे के शरीक हाल हो। अल्लाह ताला इस आयत में क्या बता रहे हैं कि जिसने रहमान की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से, और ज़िक्र बड़ा जामे लफ्ज़ है, इल्म सीखना ज़िक्र है और इल्म के मजलिसों में बैठना ज़िक्र, नमाज पढ़ना ज़िक्र, कायनात पर तदब्बुर करना ज़िक्र की एक किस्म है, ठीक है। हम लोग ज़िक्र को एक्चुअली बहुत शॉर्ट टर्म लेते हैं, नमाज को और बस तस्बीहात, ये भी ज़िक्र की एक अफजल कैटेगरी है, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें अज़कार में आ जाती हैं। तो जिसने अल्लाह के अल्लाह को बुला दिया और अल्लाह से एराज कर लिया, उसने कुरान को पढ़ने से आंखें बंद कर ली, उसकी फहम व बसीरत और उस पर गौर व तदब्बुर करने से और उससे मुराद इलाही के समझने से आंखें फेर ली, तो अल्लाह क्या सज़ा देते हैं, शैतान को उस पर मुसल्लत कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि जितना इबादत में मजबूती होगी उतना शैतान हमसे दूर रहेगा। और हमें देखना चाहिए कि जितना नमाज में हमारा हिस्सा होता है ना, उतनी एक्चुअली हमारी नमाज होती है, यानी हदीस का भी मफहूम है ना कि तुम्हारी नमाज में तुम्हारा उतना ही हिस्सा है जितना तुमने समझ कर पढ़ा। तो हमें देखना चाहिए हमारी नमाजें कैसी हैं, वो जिक्र की कैसी कैटेगरी है, खुशु व खुजू कितना है, कितने समझ कर पढ़ते हैं, फिर जो अस्कार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, क्या हाल है उनका। तो हमें अपने लिए खुद सोचना होगा, हम अपने खुद जिम्मेदार हैं। तो खुलासा क्या हुआ आज की कन्वर्सेशन का, सिंपली एक लाइन में मैं वाइंड अप करती हूँ कि हक का अपने ऊपर नफाज बहुत ज़रूरी है। अगर हम हक का नफाज आज नहीं करेंगे तो कल अंजाम भुगतना होगा। तो आज हमें तौअन अल्लाह के पास आ जाना चाहिए, वरना कल तो करहन अल्लाह का ही होना है। अल्लाह ताला हमें आज ही अपनी तरफ फेर दें, बजाय इसके कि वो दिन जब हम अल्लाह की तरफ जाना चाहें लेकिन अल्लाह हमें अपना ना बनाए, उससे पहले आज जब अल्लाह ताला बनाने को तैयार हैं तो हम अल्लाह ताला के बन जाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।